हरे कृष्णा। कल कौन कौन यहाँ उपस्थित थे, कौन नहीं थे कल यहाँ? अच्छा, तो जो नहीं थे उनको हम थोड़ा समझाना होगा। कोई दिन से हम क्या विचार कर रहा था, भगवान और देवता में क्या अंतर है? भगवान और देवता क्या एक है? नहीं, भगवान एकले ईश्वर कृष्ण और सब व्यक्ति, केवल श्री कृष्ण ही परमेश्वर भगवान है और बाकी सब उनका सेवक है, उनका नौकर है, भृत्य है। तो ये भली भांति हमें समझना है। तो ये क्या, क्योंकि हम कृष्ण का भक्त है इसलिए हम क्या बोलते हैं कि कृष्ण ही सबसे बड़ा है, असल में क्या यह बात है, या ये क्या हमारा कोई मन का कल्पना है, या ये सच है, ये वास्तव है? ये वास्तव है कैसे पता चलेगा? शास्त्र के माध्यम। इस विषय में, आध्यात्मिक विषय में जो कुछ हम कहते हैं, जो कुछ हम ग्रहण करते हैं, उसको शास्त्र के माध्यम ग्रहण करना। हमारे मन की बनावट कोई हम ना तो प्रचार करेंगे ना तो ग्रहण करेंगे। जो कुछ हम कहते हैं और जो कुछ हम मानते हैं, सबसे पहले हमें समझना होगा क्या वो क्या शास्त्र का वाणी है या कोई मामूली आदमी का कहना है। तो कल क्या विचार किया था हमने, गोवर्धन पूजा के बाद इंद्र ने जब संबर तक मेघ को भेजा था वृंदावन को ध्वंस करने के लिए, तो तब भगवान ने गोवर्धन धारण करके ब्रजवासियों को रक्षा की। तो 7 दिन इंद्र ने कोशिश किया वृंदावन को ध्वंस करने के लिए और गोवर्धन को भी चूरमार कर देने के लिए, वज्रों को भेजा था। पर जब इंद्र ने 7 दिन के प्रचेष्टा के बाद जब असफल हुआ था, तब इंद्र को पता चला कि ये कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसको तब समझ में आ गया था कि ये श्री कृष्ण ही उनका प्रभु श्री नारायण। तब इंद्र ने कृष्ण के पास आकर उनका वंदना किया, स्तव किया। वो स्तव का विचार कल हम किया था। तो आज इंद्र को भी आगे बढ़कर कौन है, इंद्र है देवताओं का राजा, वो स्वर्ग लोक का राजा है, इंचार्ज। परंतु ये ब्रह्मांड का जो पालन करने वाला, इस ब्रह्मांड का जो अध्यक्ष कौन है, इस ब्रह्मांड का अध्यक्ष ब्रह्मा जी। तो आज हम विचार करेंगे ब्रह्मा जी किस रूप से श्री कृष्ण को दर्शन किया था, ब्रह्मा जी कैसे दर्शन किया था कृष्ण को। एक दिन सुबह कृष्ण जब ग्वाल बाल और गाय को लेकर गोचारण में जा रहे थे, तो रास्ता पर पथ पर वो उन्होंने देखा एक विशाल सांप। पर वो इतना विशाल था कि वो उसको पता नहीं चला कि ये कौन है, क्या है। असल में वो था कंस का एक मित्र जिसका नाम था अघासुर। अघ का मतलब क्या है, अघ का मतलब है पाप। तो अघासुर का मतलब बहुत बड़े पापी असुर था। असुर सब पापी होता है, पर ये एक विशेष पापी असुर था। और ये कंस का जो अनुचर या मित्र जो थे, वो सब योगी थे, उनका योग सिद्धि था। योग सिद्धि के कारण वे बहुत आश्चर्य कार्य संपादन कर सकते। जैसे वो एक सांप के रूप ले 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 ले, ले सका, जैसे त्रिनावर्त एक झंझा के रूप में आया था, शकट बकासुर अघासुर ये सब। जब डरते हैं तो क्या करना चाहिए? जब हम डरते हैं तो भगवान को शरण लेना चाहिए। जब हम डरते हैं किसी को सहारा मिल जाने से क्या होता है? और भय नहीं रहेगा, विशेष रूप से अगर वो व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, बहुत ही समर्थ होते हैं, तो कोई डर नहीं रहता। तो इस भौतिक जगत में पद पग 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 में डर का संभावना रहता है। इस कारण इस भौतिक जगत को भयंकर वर्णन किया गया, भयंकर के रूप में, भय अंकर, भय प्रदान करने वाला। तो हर पग में यहां भय का संभावना रहता है। तो जब भय का संभावना रहता है तो क्या करना चाहिए? जो अभय चरण जो है, जिसको चरण को सहारा लेने से सारे भय दूर हो जाता है, उनको शरण लेना चाहिए। भगवान को शरण लेना चाहिए और भगवान का भक्त पद शरण। जैसे श्री प्रभुपाद हैं अभय चरणारविंद। तो ब्रह्मा जी ने ग्वालवाल ने देखा कि पथ गोचारण में जा रहे थे, पथ पर देखा एक विशाल एक अद्भुत एक बल ये दृश्य उनको प्रकट हुआ। देखा जब उसको देखकर मालूम हुआ कि ये पर्वत का गुफा है और उन्होंने सोचने लगा रे ये तो कभी नहीं देखा था, चलो आज एक नया ये मिल गया है, चलो हम जाके देखते हैं उसका अंदर क्या है। और अघासुर भी वो उसका ही प्रतीक्षा कर रहा था। अघासुर ने चाहा था कि जब सारे ग्वाल बाल उसको वहां आएंगे, उसका मुंह पर घुस जाएंगे कृष्ण के साथ, तो उसको खा लेंगे और खत्म कर देंगे। तो ग्वाल बाल गाय के साथ बछड़े के साथ उस समय कृष्ण का उम्र था केवल 5-5.5 साल। 5 साल से कृष्ण ने गाय लेके वृंदावन के और जाने का, गाय चराने के लिए गाय चराना शुरू किया था। गाय नहीं बछड़ा। तो ये सारे बछड़ा के साथ ग्वाल बाल सब घुस गया था अघासुर के मुंह पर, और अघासुर ने प्रतीक्षा कर रहा था कब कृष्ण घुसेंगे। जब कृष्ण घुसेंगे तो वो अपना मुंह बंद करके सबको खा ले। और कृष्ण भी सोच में पड़ गए जब देखा सारे ग्वाल बाल गायों को साथ घुस गया है। कृष्ण सोचा अब मैं क्या करूं। ये सोचकर कृष्ण को पता चल गया था कि ये अघासुर है। कृष्ण तो अंतर्यामी है, सारे व्यक्ति का मन के मन भाव कृष्ण का भली भांति पता रहेगा। तो वो कृष्ण तब सोचा क्या करना क्या करूं। तो कृष्ण ये सोचकर वो भी कृष्ण भी अघासुर का मुंह में घुस गया और तब अघासुर अपना मुंह बंद कर दिया। सोचा कि अब चलो मेरा काम हासिल हो गया, अब इसको सारे ग्वाल बाल के साथ कृष्ण को मैं खत्म कर दूंगा। उस दिन बलराम का जन्मदिन था, इसलिए माँ यशोदा माँ रोहिणी ने बोला कि बलराम आज तुम गाय चराने को मत जाओ, तुम घर में ही रहो। तो बलराम उस दिन वहां नहीं था, नहीं तो अघासुर का और भी मुश्किल होता था। तो जब कृष्ण ने घुस गया तो अघासुर ने मुंह बंद कर दिया मतलब सारे ग्वाल वाल के साथ कृष्ण को खाने का प्रबंध किया था। तो तब कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने अपना शरीर को एक विशाल रूप में विस्तार कर दिया, बढ़ा दिया, बढ़ा के इतना बढ़ाया कि अघासुर का गला में कृष्ण अटक गया। अघासुर कृष्ण को गिल नहीं पा रहा और केवल कृष्ण अपना शरीर को विशाल रूप से विस्तार ही नहीं किया, कृष्ण ने अपना शरीर को बहुत शरीर से बहुत सा तेज या ताप निकलने लगा, बहुत गर्म हो गया, जैसे एक आग के पिंड जैसे। और तो अघासुर तब कृष्ण को उगालने को कोशिश की, पर कृष्ण तो छोड़ने वाला नहीं है, तो कृष्ण अघासुर का जान, जब कृष्ण को नहीं उतार ना सका, उगाल ना सका, तो अघासुर का प्राण वायु निकलने का राह भी नहीं था, तो अघासुर का प्राण वो ब्रह्म तालु से, ब्रह्म रंध्र से निकल गया, मर गया। पर कैसे निकल, मुंह से तो निकलने का ये नहीं था, तो ब्रह्म रंध्र तोड़कर वहां से निकल गया। तब ब्रह्मा जी ने भी देख रहा था, अपना वाहन हंस के वाहन के ऊपर बैठकर ब्रह्मा जी ने ये आश्चर्य कार्यकलाप देख लिया। तो ब्रह्मा जी ने देखा, पहले तो देखा था कि ये अघासुर ये बहुत खतरनाक ये असुर था, वो इतना ही शक्तिशाली था कि देवताओं ने अघासुर को नाम सुनते ही डर के मारे कांपता रहा। तो ब्रह्मा जी ने देख रहा था और ब्रह्मा जी ने देखा अघासुर का आत्मा अपना शरीर से निकलकर गगन पर थोड़ा समय तक वहां स्थिर रहा। और जब कृष्ण ने अघासुर का मुंह से निकला, तब अघासुर का आत्मा कृष्ण का शरीर में लीन। तो अघासुर ने सोचने लगा, ये बच्चा कौन है, ऐसे तो 5-6 साल का एक लड़का है, ग्वाल बाल है, सुबह से शाम तक अपने दोस्त साथियों के साथ, मित्रों के साथ खेलते हैं, सखाओं के साथ और गाय चराते हैं, पर ये लड़का कौन है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा, चलो मैं थोड़ा देखता हूँ ये कौन। तब ब्रह्मा जी ने देखा, कृष्ण ने सारे ग्वाल बाल को अघासुर का पेट से निकला और अपने दृष्टिपात के द्वारा उन सब में प्राण के संचार किया। और जैसे उन लोगों ने ग्वाल बाल का ऐसा मालूम हुआ कि वो नींद से जाग उठा, उसको कुछ पता नहीं था, सोचा क्या हुआ, सो गया था क्या? तो उन्होंने उसको कुछ भी पता नहीं था कि अघासुर ने उसको हत्या कर चुका था गिलकर। तो तब कृष्ण ने अपने साथियों को साथ जमुना के तट पर आया और आकर वहां बोन भोजन शुरू किया। अपना साथ जो खाना लेकर आया था सब बोला कि चलो, जब गाय ग्वाल जब बछड़ा सब चल रहा है जमीन पर क्षेत्र पर, तब हम कुछ घर से जो खाना लाए हैं वो सब हम खाते हैं, वन भोजन करते हैं। तो वन भोजन करते समय चारों ओर, कृष्ण के चारों ओर सब बैठा एक कमल जैसा, बीच में जो कर्णिकार है उसमें कृष्ण ने बैठा है और चारों ओर पत्ता जैसा सारे गोप सखा में बैठा है और खाना खाने शुरू किया। कृष्ण ने अपना जो खाना है वो अपना दोस्त को बांटा और दोस्तों ने अपना घर से जो लाया था वो कृष्ण जब मांगा, कृष्ण बोला देखो, उन्होंने बोला कि देखो कृष्णा, मेरा पिता माता तो तुम जैसे राजा नहीं है, तुम्हारा पिता जैसे ये रईस आदमी नहीं है तो हमारा घर का खाना उतना अच्छा नहीं है, तुम ये मत खाओ। तो कृष्ण ने बोला नहीं, मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारा घर से, मेरा तो मालूम होता है कि तुम्हारा माँ बहुत अच्छा खाना बनाया, तो इतना अच्छा खाना बनाया उसलिए तुम हमें देना नहीं चाहते। तब ग्वाल बाल ने बोला नहीं कृष्णा, हम तुमको नहीं देना चाहता हूँ, ये उतना अच्छा नहीं, उतना बढ़िया नहीं। तब कृष्ण ने बोला देखो वो पंछी पेड़ पर बैठा हुआ है, देखो कितना सुंदर पंछी। जब ग्वाल बाल जब पंछी की ओर देखने देखा तब कृष्ण ने उसका खाना चुरा लिया। तो ऐसे कृष्ण ने अपने सखाओ गोप सखाओ के साथ ऐसे लीला कर रहे थे। ब्रह्मा जी को पता ऐसा मालूम हुआ कि शायद ये कृष्ण नारायण है, मेरा प्रभु नारायण है। बल्कि जब देखा कि कृष्ण ने अपने साथियों के साथ ऐसा आचरण व्यवहार कर रहे हैं तो सोचा नारायण तो कभी ऐसा नहीं है, नारायण तो और किसी को झूठा नहीं खाएंगे, किसी का झूठा भगवान तो किसी को झूठा नहीं खाते हैं पर सब भगवान को प्रसाद लेते हैं। बल्कि ये तो ऐसा आचरण तो भगवान के लिए कभी संभव नहीं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा तो ये कौन है, चलो थोड़ा परीक्षा करके देख लेते हैं। ये सोचकर ब्रह्मा जी ने जो बछड़ा जो चल रहा था वन में उसको चुरा लिया, और अचानक सारे गोप सखा गोप बालकों ने देखा कि कोई भी बछड़ा को दिखाई नहीं दे रहा, तो सोच में पड़ गए कहाँ गया सब। तो वो तुरंत ढूंढने के लिए प्रबंध कर रहा था तो कृष्ण ने बताया देखो तुम लोग सब खा रहे हो, शायद वो बन कर अंदर चले गए होंगे बछड़ा, तो कोई फिक्र मत करो तुम खाते रहो, मैं जाके सब बछड़ा को वापस ला रहा हूं। तो ये कहकर कृष्ण वहां से निकल गए बछड़ा को ढूंढने के लिए, और बल्कि कोई भी बछड़ा दिखाई नहीं दिया। तब कृष्ण ने सोच में पड़ गया, वापस आया, जब वापस आया तो देखा सारे गोप सखा भी वहां से अंतर्धान हो गए। तो कृष्ण ने सोचने लगा क्या हुआ, तो ब्रह्मा जी पहले तो बछड़ा को चुराए, उसके बाद गोप बालकों को चुराए, चुरा के एक पर्वत के गुफा में डालकर वो गुफा का बंद कर दिया मुंह पर एक बड़ा पत्थर से, और योग निद्रा में उसको सुला दिया। और कृष्ण ने जब आकर देखा कि सारे ग्वाल बाल भी अंतर्धान हो गए हैं, तब कृष्ण ने अपना दृष्टि से अंतर्दृष्टि से देखा क्या हुआ, तब देखा ये ब्रह्मा जी का कार्य था। तो बोला ठीक तुम हमें परीक्षा करना चाहते हो, चलो हम भी कुछ कुछ तुमको दिखाऊं। ये सोचकर कृष्ण ने अपने आप को जितना ग्वाल बाल और बछड़ा के रूप में अपने आप को विस्तार किया। तो ब्रह्मा जी का एक क्षण एक पल हमारा एक साल होता है। ब्रह्मा जी ने बच्चे को ग्वाल बाल को रख के जब मोड़ के देखा तो देखा ये सारे ग्वाल बाल वैसा ही वन भोजन कर रहे हैं और बछड़ा भी वन में घास खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी आश्चर्य हो गए, तो पत्थर हटाकर देखा वो सारे ग्वाल बाल वहां और बछड़ा भी सोए हुए हैं। तब ब्रह्मा जी का पता चला, तब ब्रह्मा जी ने देखा कि कृष्ण का जो ग्वाल बाल साथ में था वो सब एक एक नारायण मूर्ति है, सब नारायण, क्योंकि वो तो कृष्ण के ही अंश हैं। तो देखा सारे गाय बछड़ा और ग्वाल बाल जो कृष्ण का साथ था वो सारे सब नारायण हैं। तब उसको पता चला कि ये कृष्ण ही नारद है। तब ब्रह्मा जी ने आकर श्री कृष्ण के पास आकर माफी मांगा और अब ब्रह्मा जी ने कृष्ण की स्तुति करनी शुरू की। तो ये जो स्तुति है ये आज हम विचार करें। कल विचार किया था इंद्र ने कृष्ण के बारे में क्या बताया, कैसे बंधन किया था, स्तप किया था। आज हम देखेंगे ब्रह्मा जी कैसे कृष्ण का स्तप कर, कितना सुंदर रूप से इसका वर्णन हुआ है। ब्रह्मा जी ने बता रहे हैं, श्री ब्रह्मोवाच नैमित्यते अभ्र बपुषे तरिदम्बराय भुंझावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय बन्न स्रजे कवले वेत्र विषाणु वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपंगजाय। ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु, आप ही एकमात्र पूज्य भगवान हैं, अतएव आपको प्रसन्न करने के लिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ और आपकी स्तुति करता हूँ। हे ग्वाल नरेश पुत्र, हे ग्वाल नरेश पुत्र, आपका दिव्य शरीर नवीन बादलों के समान गहरा नीला है, आपके वस्त्र बिजली के समान देदीप्यमान है और आपके मुखमंडल का सौंदर्य आपके गुंजा के बने कुंडलों से तथा सिर पर लगे मोरपंख से बढ़ जाता है। अनेक वन्य फूलों तथा पत्तियों की माला पहने तथा चराने की छड़ी लकुड़ी लकुटी श्रृंग और बंसी से सज्जित आप अपने हाथ में भोजन का कोड़ लिए हुए सुंदर रीति से खड़े हुए हैं। मैं सिर्फ हिंदी अनुवाद ही पढ़ता हूँ। हे प्रभु, न तो मैं न ही अन्य कोई आपके इस दिव्य शरीर की शक्ति का अनुमान लगा सकता है। जिसने मुझ पर इतनी कृपा दिखाई है, आपका शरीर आपके शुद्ध भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए प्रकट होता है। यद्यपि मेरा मन भौतिक कार्यकलापों से पूरी तरह विरत है, तो भी मैंने आपको साकार रूप को नहीं समझ पाता। तो भला मैं आपको आपके ही अंतर में आपके द्वारा अनुभूत सुख को कैसे समझ सकता हूं। जो लोग आपने प्रतिष्ठित सामाजिक पदों पर रहते हुए ज्ञान विधि का तिरस्कार करते हैं और मनसा वाचा कर्मणा आपके तथा आपके कार्यकलापों के गुणगान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और आप तथा आपके द्वारा गुंजित इन कथाओं में अपना जीवन अर्पित कर देते हैं, वे निश्चित रूप से आपको जीत लेते हैं, अन्यथा आप तीनों लोकों में किसी के द्वारा भी अजेय हैं। अच्छा, you have problem there. Who is translating? Parul is translating. Give the where is the what are the other? Then English copy, sir. Yeah, tomorrow from tomorrow you keep that book with you. तो देखिए ब्रह्मा जी ऐसे भगवान को बनाना। तो आप बताइए प्रभु कौन है और सेवक कौन है? भगवान ही प्रभु है। ब्रह्मा जी भगवान को स्तुति कर रहे हैं और ब्रह्म संहिता भी हम विचार चर्चा किया था। ब्रह्म संहिता के आधार पर हम सेमिनार दिया था। उस सेमिनार में आप कौन कौन थे? बस आप सब नहीं थे। अच्छा, ठीक है। You are there. हाथ उठाए। हाँ, उपदेशम ब्रह्म संहिता पहले हो चुका था, तो आप उसके बाद आना शुरू किया। आज स्कूल जाने में कोई मुश्किल तो नहीं हुआ? सच। बल्कि मेरे लिए, मेरा कहने के लिए ही वो शर्माते हुए मंगल आरती में ये सोचना है नहीं कि हम ये आपको फोर्स करते हैं। कोई तकलीफ नहीं हुआ? ठीक है जब। अच्छा, दिस इज 10th कैंटो चैप्टर 14 टेक्स्ट 4, गो टू टेक्स्ट 4। हे प्रभु, कौन कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं? भगवान के बारे में। हे प्रभु, आत्म साक्षात्कार का सर्वोत्तम मार्ग तो आपकी भक्ति है। देखिए ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, आत्म साक्षात्कार का सबसे सबसे श्रेष्ठ मार्ग क्या है? आपकी भक्ति, ना क्या और कोई मार्ग है इससे बढ़कर? तो सब सर्वोत्तम मार्ग क्या है? आत्म साक्षात्कार का सर्वोत्तम मार्ग तो आपकी भक्ति है। यदि कोई इस मार्ग को त्याग करके ज्ञान के अनुशीलन में प्रवृत्त होता है तो उसे क्लेश उठाना होगा और वांछित फल भी नहीं मिल पाएगा। उसको केवल क्लेश ही मिलेगा, कष्ट ही मिलेगा, परंतु कुछ लाभ नहीं, कुछ फायदा नहीं, कुछ प्राप्ति नहीं। कैसा? जिस तरह थोथी भूसी को पीटने से अन्य गेहूं नहीं मिलता है। भूसी को पीटने से गेहूं मिलेगा? केवल श्रम ही होगा, कुछ उससे कुछ प्राप्ति नहीं। उसी तरह जो केवल चिंतन करता है उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाता। उसके हाथ केवल क्लेश लगता है। हे सर्वशक्तिमान, भूतकाल में इस संसार में अनेक योगी जनों ने अपने कर्तव्य निभाते हुए तथा अपने सारे प्रयासों को आपको अर्पित करते हुए भक्ति पद प्राप्त किया था। हे अच्युत, आपके श्रवण तथा कीर्तन द्वारा संपन्न ऐसी भक्ति से वे आपको जान पाए और आपकी शरण में जाकर आपके परम धाम को प्राप्त कर सके। जैसे योगी जनों ने, बहुत बड़े बड़े योगी जनों सिद्धि प्राप्ति के पश्चात भक्ति करके मार्ग ग्रहण करके भगवान को शरण में आ सके। केवल ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा भगवान को शरण या इस भौतिक जगत से छुटकारा। इस कारण क्या वर्णन क्या बताया गया है? हरिर्नाम इव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिव। क्यों हरिर्नाम? क्यों भगवान का नाम ही केवल? क्यों भगवान को कृपा या इस भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्ति का एकमात्र उपाय है? क्यों है? क्योंकि इस कली, क्योंकि इस युग में भगवान का नाम ही भक्ति का उपाय है। भगवान के नाम के कीर्तन से ही भक्ति संपन्न होता है। तो देखिए यहां और भी विशेष रूप से इसका वर्णन हुआ है। केवल भक्ति ही नहीं, भक्ति को संपादन करने का भी विशेष विशेष तरीका होता है। सत्ययुग का उपाय क्या था? सत्ययुग का भक्ति का मार्ग कैसा था? तुम बताओ, सत्ययुग का मार्ग क्या था प्रदीप? सत्ययुग का क्या था भक्ति का मार्ग? ध्यान। वेरी गुड। और त्रेता युग में भक्ति का मार्ग क्या था? यज्ञ। द्वापर युग में पूजन, और कलियुग में, तो कलियुग में अगर कोई भक्ति करना चाहता है तो उसको क्या करना, हरि नाम और यज्ञ ध्यान पूजन के द्वारा वो संपन्न। इसलिए केवल भक्ति ही नहीं, इस युग के लिए भक्ति का एक विशेष विशेष तरीका है, उसको ही अवलंबन करना चाहिए। यहां तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं भक्ति ही एकमात्र उपाय है, परंतु हमें और भी भली भांति विचार करना होगा भक्ति भी कैसे संपादन करना चाहिए। किंतु अभक्तगण, अच्छा नहीं, हे सर्वशक्तिमान, भूतकाल में इस संसार में अनेक योगी जनों ने अपने कर्तव्य निभाते हुए तथा अपने सारे प्रयासों को आपको अर्पित करते हुए भक्ति पद प्राप्त किया। तो योगी जनों ने योग के सिद्धि के पश्चात भक्ति के मार्ग प्राप्त होकर भगवान को सेवा करने करते हुए और भगवान के चरणों में अपने सारे कार्यों अर्पण करते हुए आपको भक्ति पद प्राप्त किया। आपके श्रवण तथा कीर्तन द्वारा संपन्न ऐसी भक्ति सेवे आपको जान पाए और आपकी शरण में जाकर आपके परम धाम को प्राप्त कर सके। किंतु अभक्तगण आपके पूर्ण साकार रूप में आपका अनुभव नहीं कर सकते। जो भक्त नहीं है वो भगवान को रूप को नहीं मानते, ज्यादा से ज्यादा वो भगवान को निराकार रूप में मानते, नहीं तो जो मानते नहीं जो मानते नहीं है वो क्या है, वो नास्तिक है। अगर वो आस्तिक भी हैं तो वो निराकारी है, मतलब भगवान को रूप को नहीं मानता। तो जो भगवान को रूप को नहीं मानता है वो भगवान के साथ क्या संपर्क जोड़ सकता है, सकते हैं कभी नहीं। भगवान के साथ संपर्क जोड़ने के लिए भगवान को रूप को स्वीकार करना आवश्यक है। जिसका रूप नहीं है उसके साथ संपर्क कैसे बनाएंगे, है ना? रूप जिसके रूप नहीं है, जो निराकार है, मतलब जिसका आकार नहीं है, उसके साथ हम कैसे संपर्क बनाएंगे, हो सकता है कभी? संपर्क बनाने के लिए रूप का, क्योंकि अच्छा ठीक है, ये अगर बोलते रहेंगे तो बहुत ही कुछ बोलना होगा, तो हम यहाँ ब्रह्मा जी के क्या कह रहे हैं उसका ही हम विचार करते रहेंगे। किंतु अभक्तगण आपके पूर्ण साकार रूप में आपका अनुभव नहीं कर सकते, फिर भी हृदय के अंदर आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा वे निर्विशेष ब्रह्म के रूप में आपका अनुभव कर सकते। किंतु वे ऐसा तभी कर सकते हैं जब वे अपने मन तथा इंद्रियों को सारी भौतिक उपाधियों तथा इंद्रिय विषय के प्रति आसक्ति से शुद्ध कर ले। केवल इस विधि से ही उन्हें आपका निर्विशेष स्वरूप प्रकट हो सकेगा। समझ रहे हैं? कोई मुश्किल नहीं हो रहा है? कोई अगर समझने में कोई दिक्कत होगा तो हमें बताएं। समय के साथ विद्वान, दार्शनिक या वैज्ञानिक पृथ्वी के सारे परमाणु, हिम के कण या शायद सूर्य, नक्षत्र तथा ग्रह से निकलने वाले ज्योति कणों की भी गणना करने में समर्थ हो सकते हैं, किंतु इन विद्वानों में ऐसा कौन है जो समस्त जीवों के लाभ के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित आपके अनंत दिव्य गुणों की गणना कर सके। ऐसा हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति कभी सारे परमाणु को गणना कर गिन सकते हैं, सूरज के सारे किरण को गिन सकते हैं, हा? और नक्षत्र से ज्योति जो निकलता है उसका भी सारे कर्ण को गिन सकते हैं, गणना करने में समर्थ हो सकते हैं, किंतु भगवान के गुण का गणना कोई भी नहीं कर सकता। कितने परमाणु है ये गिनना कभी संभव होगा? ब्रह्मा जी के लिए भी ये संभव नहीं है। और हमारे क्या कहना। तो अब देखिए भगवान का गुण कितना असीम है, अंतहीन है। तो आज हम यहां तक ही विचार रखते हैं। तुलसी आरती शुरू हो गया शायद, तो वैसे ये जो हम विचार कर रहे हैं, क्यों विचार कर रहे हैं, ताकि हमारा मन में अगर कोई संदेह रहता है कि शायद श्री कृष्ण भगवान नहीं है, तो ये जो शक इसको दूर करने के लिए हमें विचार करना चाहिए कि और व्यक्तियों ने क्या कहा, ब्रह्मा जी ने क्या कहा। तो ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं वो हम मानेंगे ना, क्या कोई फालतू आदमी कुछ कहता है उसको मानेंगे? जो महान व्यक्ति हैं उनको ही वाणी को ग्रहण करना चाहिए। और ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी महाजन है। भगवान के बारे में ब्रह्मा जी का पूर्ण ज्ञान है। ब्रह्मा जी एक महान भक्त। हरे कृष्णा। तो हम आज और एक मीटिंग के लिए टाइम दिया था। हरे कृष्णा।